अच्छा कितनों का, मतलब जैसे कितनों को बचपन में पॉकेट मनी नहीं मिली है?
अच्छा काफी लोगों को नहीं मिली है।
अच्छा पता है हमारे पेरेंट्स ने बताया ही नहीं, खा गए, काकोरी से ट्रेन लूटी जाएगी, बताया ही नहीं। उस चक्कर में मेरी बेइज्जतियां बहुत हुई हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि सब कुछ मिलता है फ्लाइंग किस से। मैं पहली बार एक दुकान पे गया, मैंने कहा भैया एक 5 स्टार और ये लीजिए। He was like, ना 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 ना। तो मुझे लगा उस तक पहुंची नहीं, तो मैंने पूरी जान से दी, मैंने कहा करा ना 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 ना। तो मुझे लगा इसको लिप्स पे चाहिए, पर मैंने कहा इतने क्लोज रिलेटिव्स तो है नहीं। मैं भाग के गया अपने घर पे, मुझे लगा मेरी पावर खत्म हो गई। अच्छा आपको मैम पॉकेट मनी के बारे में कब पता लगा था कि पॉकेट मनी होती है? 6-7 हमारे में नहीं बताया। आपने मॉरल साइंस पढ़ी है स्कूल में? तो मैं एक बार मॉरल साइंस पढ़ रहा था, तो उन्होंने मैम ने पूछा आराम से, एक तो मॉरल साइंस क्यों पढ़ते हैं आप लोग? बस पढ़ लिया आपने। तो मैं पढ़ रहा था, तो मैम ने एक बार मुझसे पूछा कि बेटा बताओ कि जब तुम अपने पेरेंट्स को इकट्ठा देखते हो तो कैसा लगता है? मैं लगा कि अब क्या गलत कर दिया मैंने। सच्चाई है। तो साथ वाले बच्चों को पूछा कि बताओ बेटा पॉकेट मनी क्या होता है? उसने बता दिया, कह रहा घर के जो काम करते हैं उसके पैसे मिलते हैं, स्टाइफन मिलता है घर का। भाई गॉड, मेरा भाई साहब दिमाग खराब, मेरा माँ बाप से विश्वास उठ गया। मैंने अपनी बहन को बताया सारी बातें और हम गए घर, और जैसी पेरेंट्स ने बताया कि हमारा हिसाब कर दो आज ही सारा। और पेरेंट्स को पता था, तो पेरेंट्स ने बोला देखो थोड़ा टाइम दो समझने के लिए। मैं कहा नहीं, हमारा हिसाब कर दो, हम दूसरे माप ढूंढ लेंगे। तो उन्होंने बोला तो अच्छा, मेरी मम्मी जो है ना, मेरी मम्मी मैथ्स की टीचर हैं, उनका नाम सुमन है, आप समझ रहे हो, मैथ्स की टीचर समझदार है। तो थोड़े उन्होंने बोला कि हमें 2 दिन का टाइम दो। तो मुझे लगा 2 दिन वो थूक लगा के नोट गिनेंगे, क्योंकि बचपन से इतना पैसा इकट्ठा हो गया होगा ना, और हमें मोरल साइंस से पढ़ाया कि हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें काम में हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने आपकी काम में हेल्प करूँ, करी काम डाउन, मैं अपना देख लूंगी। मैडम 2 दिन। तो हमने कहा 2 दिन तक हम भी कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। हमने चलाया नो मूवमेंट। मम्मी कहती चिड़िया उड़ी, हमने कहा नहीं उड़ा रहे। मम्मी कहती ये काम कर दो, मैं तो बोर्ड दिखा दिया। मैं कहा सुमन गो बैक। भाई करना होता। तो मैम 2 दिन बाद है। अब वो औरत मैथ्स की टीचर है, तो यहाँ देखो खेल उनका। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा अब जो हुआ वो हुआ, अब से पैसे मिलेंगे, बट उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें क्या है कि अब तुम्हें हर काम के पैसे मिलेंगे, जैसे आप सुबह उठ के अपने आप स्कूल चले जाओ 2 रुपए, आप वापस आओ अपने कपड़े तय करके रखो, खाना खा लो 2 रुपए, दोपहर में आराम से जैसे सो के अपना काम करो, पढ़ाई करो, शाम को खेल के वापस आ जाओ 2 रुपए। आप देख रहे हो उनके जितने भी एक्यूपंचर के पॉइंट थे, जिसमें घर में कलेश होते हैं, उन्हें सारी आवाज दबा दी पैसे से। तो समाज में कोई नई बात नहीं थी वैसे। तो भाई साहब नेक्स्ट दिन से हमने शुरू किया अंधा पैसा कमाना, अंधा 18-18 रुपए, 20-22 रुपीज। भाई साहब पहले शुरू में समझ नहीं आया मैं इतने पैसे का करें क्या। मेरा बेस्ट फ्रेंड नोनू, मुझसे बात नहीं कर रहा, करा अब तो तू अमीर आदमी हो गया, तू इस गरीब आदमी से क्यों बात करेगा। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है सुदामा। भाई साहब मैडम अंधा पैसा आने लगा, अंधा पैसा। मैंने एक दो स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, पता आपको स्टार्टअप में, मेरा स्टार्टअप देता कि ना हमारी क्लास में ना लवबर्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, पर वो गिफ्ट्स घर पे लेके नहीं जा सकते, तो मैं वो रेंट पे रखता था अपने घर पे। आप इमेजिन करो मैं 25-25 टेडी बियर के साथ सोया हूं। मैडम आपकी फैंटेसी मैं कर चुका हूं। तो इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा। अच्छा सबसे पहले ना तुम्हारे माँ बाप को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा पैसा देते हैं हाथ में, कभी सोचा आपने, नोटिस किया है? मतलब उनको लगने लगा कि कहीं सामने वाला प्लॉट ही ना ले ले। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ना कभी पैसे नहीं देते, पैसे प्लस ज्ञान नहीं देते भाई साहब उतना। कितनों ने सुना है बात, इसके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। टिकता ही नहीं, टिकता। मैं कहा आपने 5 रुपए दिए हैं, इसे कहां टिकाऊं, इसे कौन से म्यूचुअल फंड में लगाऊं, वो खुद जोखिमों के अधीन है। तो भाई साहब आप क्या, मैं तुमको अंधा पैसा आ रहा था, अंधा पैसा। तो भाई साहब अब पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं मैम, स्कूल में अलग हो गया मैडम, स्कूल में 7B और C की लड़कियां मर जा रही मुझसे बात करने के लिए। मेरा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था, मैं सनफ्लावर बना, 30 लड़कियां हनी बी बन गई। सब कह रही बी विद मी, बी विद मी, बी राघव पगली कहेगी। मेरा दोस्त आ गया नोनू, क्या रजत ये तुझसे नहीं तेरे पैसे से प्यार करती हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं है बीरबल, मगर पैसा मैं बंधा आ रहा था, अंधा पैसा, सोच रहा कितना पैसा आदमी के पास आता है यार, क्या करे इतने पैसे का, मतलब मोहल्ले को शक हो गया मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ। स्कूल में तो अलग ही फैल गया, कह रहा भाई अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी, ये पैटी बर्गर पेप्सी इकट्ठी खा रहा है, तीनों चीजें वैरायटीज भाई साहब, स्कम्पशियस मील भाई साहब, सोसाइटी अमीर आदमी को देख नहीं पाती, बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो मैम इतना पैसा आ रहा था भाई साहब, तो क्या मैम इतना पैसा, अब क्या होगा मैम, रातों की नींद नहीं आने लगी, मेरे सपने में इनकम टैक्स ऑफिसर आ रहे हैं, कह रहे बताओ ये हार्ड कैश कहां से आया। मैं सपने से जाके बैठा हूं कि भाई साहब फोर्ब मैगजीन ऑफ मायापुरी, उसमें मैं आ गया हूं फ्रंट पेज पे, यंगेस्ट 1000 इंजीनियर्स, मैं आ चुका था उस पे। पर भाई पेरेंट्स को समझ में आ गया कि भाई पैसा जा रहा है, तो एक दिन वो मैं हमारे पास आए, दोनों को बैठाया और बोला बेटा देखो अब तुम्हारा ना फ्लैट हो जाएगा, हर महीने 500 रुपए फ्लैट। तो मेरी बहन कह रही कौन कैलकुलेट करे, तो वह चली गई पेरोल पे और मैं रह गया फ्रीलांसर। अब आपको पता मैम इतना अंधा पैसा आ रहा है आदमी के पास, कहां ले जाएगा इतना पैसा मैम। तो भाई साहब थोड़ी देर बाद माँ बाप को लगा कि भाई साहब ये बच्चा बिगड़ ना जाए, होता ही नहीं होता मैम। तो मैम वो आए मेरे पास, कह रहे देखो बेटा एक चीज बताना भूल गया आपको, क्योंकि वो देखो औरत मैथ्स की टीचर है वो, तो कह रही जो काम तुम नहीं करोगे अब उसके -10 रुपीज होगी। अब देख रहे हो वो औरत खिल गई। तो मैं 3 महीने बाद 30,000 के कर्जे में था। आप समझ रहे हो जिंदगी कैसे चल रही है। पर भाई साहब उस दिन मॉरल साइंस की बात समझ में आ गई कि भाई साहब अगर रिश्तों में पैसे आ जाए ना तो कोई चीज नहीं निपटती भाई साहब, कोई चीज नहीं निपटती। पर देखो फिर हम आ गए अपने प्राकृतिक तरीके पे जिसमें हम पॉकेट मनी कमाते हैं, लड़के जिस तरह से कमाते हैं पॉकेट मनी, वो पहला पॉकेट मनी का तरीका है हमारे माँ की यादाश कि उन्होंने कोई सामान लेने भेजा, ये तुम्हारा अमीर पति इस बात का हजरा है, दूध के टोकरे के साथ 2-2 रुपए निकाले इसने, ये अंपायर बनाया इसने इस बातों का, तुम्हारे पापा को बात बता, हंसते कोई मना करते ये आदमी नहीं। आप समझ रहे हो, देखो हमारी पॉकेट मनी में हमारे माँ की यादाश पर डिपेंड करती थी कि उन्होंने कुछ सामान लेने भेजा, हमने वो सामान दिया और मुड़ गए, अगर उन्होंने बोला पलट तो दे दिए, वरना सारे पैसे अंटी कर लिए। पर यार वो पैसे संभाल के रखने पड़ते थे 3-4 दिन, क्योंकि वो है ब्लैक मनी, और माँ बाप इनकम टैक्स अफसर के कहाँ है वो पैसे। और देखो मैंने पॉकेट मनी कमाने के लिए मैंने बहुत उलपटांग काम करे, मैं तो बचपन से एंटरप्रेन्योर रहा हूं। आपने वो पैम्पलेट पढ़ा है घर बैठे पैसे कमाए, पढ़े आपने? मैं 3 दिन घर बैठा रहा, कोई बंदा पैसे नहीं आया, मैं कहा बहुत ही फ्रॉड लोग है भाई साहब, अगले बिलीव नहीं करना। एंड द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी, जो मेन सोर्स था हमारा, वो थे रिलेटिव्स। देखो रिलेटिव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गुड, एक होते हैं बैड। गुड होते हैं नाना नानी, मामा मामी, और बैड होते हैं वो उनकी मैं बात ही नहीं करता। एक बार मेरे आया था SST में मैप लेबलिंग में कि फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया बनाओ, मैंने UP बनाया था। मैं कहा मेरे मामा ही रहते हैं। और अभी नोटिस कि जितने दूर क्रिएटिव होते हैं वो उतने ज्यादा पैसे देके जाते हैं, तो लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, मैं कहा ना डिस्टेंस इज मनी। और तुम्हारे पेरेंट का हमेशा होगा कि वो तुम्हें पैसे देंगे पर तुम्हें तो मैंने कहा आपने फिर ये फोर प्ले क्यों रखा हुआ है? रिलेटिव हमारी पूरी बॉडी रगड़ जाते हैं, ले लो ना पैसे, ले लो ना पैसे, ले लो ना पैसे। मैम मुझे बताओ कि मैं अपने पैसे क्यों ना लूं? मैं अपनी लेबर चार्ज ना लूं? एक तो बता रहा हूं इंडियन पेरेंट्स का भाई साहब हिसाब नहीं, बता रहा हूं जितने भी यहां लड़के बैठे हैं आप में से कितनों ने बचपन में लड़की वाले कपड़े पहने हैं? पहने? एक तो ना ये इंडियन पेरेंट्स की अलग फैंटेसी है कि अपने सोनू को सोनिया बनाना। मैम मुझे प्रॉब्लम नहीं है पहनने में, एक तो इमेजिन मत करो अभी आप मुझे, इन्होंने इमेजिन कर लिया। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है जब तुम्हारे दूर के रिलेटिव तुम्हारे घर पे आए और वो देखे कि इनके घर में ये नन्ही परी कौन घूम रही है, कौन सी लड़की है जो लायरा लायरा करके निकल गई। तो मैम फिर क्या करते थे, मैम मुझे वो आके खिलाते थे ऐसे, बहुतों को नहीं समझ में आया तो बेसिकली चेक करते थे। ये बात अच्छी लग रही है आपको, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए हंस रही है, इसकी और करो, इसकी और बेइज्जती करो, बता रहा हूं बेइज्जती करो आप इसकी। स्टोरी में कहां पे था? उछाली घूम रहे हैं, देख रहे हो हवा में बातें चल रही है, हवा में दिल्लियत, बिल्कुल दिल्लियत, हवा में एकदम से देख लिया उन्होंने। मैं बता रहा हूं गिव मी लाउड चीयर, इंडियन पेरेंट्स को ये नहीं पता कि अपने टीनेजर बच्चे के साथ करना क्या है, जस्ट लाउड चीयर यस। भाई साहब मेरा मम्मी का मुझसे सिर्फ दो काम है, एक मैं दूध ले आऊं, मम्मी मैं शिमला जा रहा हूं तो लौट के ले आना, दूसरा किसी भी रिलेटिव को मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, शमशान घाट, इन सब से एक्टिवा पे बिठा के घर लेके आना। वो मोदी जी कह रहे हैं विज द यूथ, भाई साहब एक्टिवा बैठा हुआ। बता रहा हूं भाई ये चल रहा है हमारे साथ। अच्छा आपकी रिलेटिव कभी तारीफ नहीं करेगा आप स्कूटर से लेके आओगे उनको? कभी नहीं। बहन जी आपका बेटा एक स्पीड ब्रेकर तो छाली दिया था ऊपर। मैं कहा अंकल जी बचपन में आपने भी बहुत बिछाया है तो बदला तो बनता है। अच्छा एक तो ना रिलेटिव के साथ बड़ा हिसाब किताब होता है, तो पैसे कमाने हैं हमें, देखो रिलेटिव का होता है ना मैम, तो मैंने ना अपने घर में रिलेटिव की एक लेजर बुक बना रखी थी। देखो मेरा छोटा सा लघु उद्योग था, ऐसे में कहते हैं इसको काफी लोग। भाई साहब मैं तो सोचता कि थोड़े दिन में इतना पैसा आएगा मैं आईटीआर भर दूंगा, जिनको नहीं समझ में आया फॉर्म 16 नौकरी ले काफी ना, आपके पति की तरह अमीर नहीं है। क्या करते वैसे ब्रदर आप? कहा था स्मगलिंग करता है, बता रहा हूं आपको। तो मैं मैंने घर में रिलेटिव की लेजर बुक बना रखी थी जिसमें रिलेटिव का नाम रियलिटी एक्सपेक्टेशन लिखा होता था। जिनके भी -10 रुपीज से ज्यादा डिफरेंस आ गया भाई साहब नेक्स्ट टाइम एमनिटीज नहीं, स्लैब थी भाई साहब रिलेटिव की, जैसे 0 से 500 तक जो रिलेटिव हम देते थे मुझे, उनको घर पे आती नमस्ते दैट्स इट। जो 500 से ऊपर के रिलेटिव थे, 5 ही थे भाई साहब, आती वेलकम ड्रिंक, वाईफाई पासवर्ड्स, उनके रूम में ना सर प्रॉपर तौली लगा के रखता था ऐसे लगाया था, मैं कहा आइए आराम से सोइए आप देख रहे हो। और रिलेटिव से होना पड़ता है मैम, क्योंकि पैसे चाहिए ना मैम। और देखो हमारे और हमें लिटरली पैसे चाहिए क्योंकि हमने मेहनत करी है। देखो हमने कितनी मेहनत करी है, हमने उनके लिए प्लेट में बिस्किट लगाए हैं, ट्यूटे हमने खाए हैं। एक तो ना हमारे खाने की स्पीड डिपेंड करती है, जब हमारे माँ बाप लिविंग रूम से रिलेटिव को गेट तक छोड़ के वापस आने तक के टेन्योर में जो आप कटोरियों में ब्रह्मांड ठूस सकते हो। आप देखो चक्कर में क्या क्या खा गए, इकट्ठा नमकीन, बिस्किट, बर्फी, रसगुल्ला इकट्ठा, संजीव को पूछ कर भाई साहब ये क्या खा रहे हैं, खबर अब कितना मस्त है। पता एक बार मम्मी ने बोला रजत, एक बार ना मेरी मम्मी गेट पे थी वापस नहीं आई, मैंने कहा भाई आज मुंह साफ करने का वक्त है, मैंने 4 बिस्किट इकट्ठे ऐसे मुंह में डाल लिए। भाई साहब जैसे पता लग गया कि वो मम्मी की साजिश थी क्योंकि बिस्किट सीले हुए थे, यू नो मैम सीले बिस्किट, द बिस्किट विद नो सेल्फ रिस्पेक्ट. पेरेंट्स का बड़ा भाई साहब बड़ा होता है मैम, बड़ा अलग होता है. मैं एक चीज तो मैं कन्फेस करता हूँ आपको, देखो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है ना बोतल, उसको मुंह से लगा के जो पीने का मजा है ना, स्पेशली रिलेटिव को देने से पहले, वो दुनिया में किसी चीज में नहीं आता भाई साहब. मतलब अरे अलग जिंदगी, ये होते हैं जिंदगी लाइफ यार. कहाँ बसे मैं तो मैम, देखो एक बार क्या हुआ, और ना रिलेटिव का हमेशा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे वो मेरी मम्मी को बोले कि बहन जी चले, जैसे ये कोड वर्ड मेरे कानों में आया कि अब दुल्हन की विदाई का वक्त हो गया है, इस मोमेंट पे हमेशा मैं गेट पे खड़ा होता हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं पैसे लूज नहीं कर सकता भाई, बोनी का टाइम है ना, तो ऐसे गेट पे मैं वैसे शर्ट पहन के विद अ पॉकेट, मैं कहा मम्मी ने हाथ में मना किया है, जेब में डालो, ध्यान किधर, पॉकेट इधर है. उसमें से ना एक होता है घटिया रिलेटिव, घटिया होता ही है ये ना, आखिरी बॉल में गुगली खेलता है हमेशा. एक काम करना तुम भाई बहन आपस में बांट लेना. मेरी बहन ने क्या किया था इसके अंदर, उससे तो घटिया रिलेटिव और था मैम, मुझे जाते थे ना एक बार फटा नोट दे गया. रिलेटिव कर जाते मैम ये काम, फटा नोट दे गया मुझे वो भाई साहब, उसको मैं सब्जी लग रहा हूं भाई साहब. नेक्स्ट टाइम मैंने लेजर बुक में नाम लिख लिया, मगर ये अगली बार आ जाए, ये अगली बार आए मैंने उसको फटे दूध की चाय पिलाई है. करा आपकी चाय फटी लग रही है, मैंने कहा आपका नोट भी फटा हुआ था. इतनी झुंडा करेंगे मैम हमारे साथ हो यार. अच्छा एक टाइम आता है जब ना तुम्हें रिलेटिव पैसे देना बंद कर देते हैं, हैव यू नोटिस दैट, ये कब होता है, ये कब बुड्ढे इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं कि अब युवा पीढ़ी को देने नहीं पैसे. मैंने एक रिलेटिव का पूरा काम किया, मतलब पूरा बैग उठा के लेके गया, सामान वामान सब रखा, जाते थे से करा जीते रहो जुग जुग जियो. मैंने देखा हाथ में कुछ नहीं था, मुझे लगा मंत्र दिया इसने कि इससे पैसे निकलेंगे मैडम. पर ये कौन बताया कि जुग जुग जीने के लिए पैसे लगते हैं जो आप देखे नहीं जा रहे. मैं क्या करूं जुग जुग जियो का बताओ, मैं दुकान में जो भरने का भैया एक 5 स्टार और ये लीजिए जुग जुग जियो. पेरेंट्स का एंड द अदर वे ऑफ अर्निंग मनी वॉज द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी वॉज दादी. भाई साहब दादी इतनी प्यारी चीज होती है ना, कि दादी को जैसे आपने पीछे से किया दादी, दादी को पता है गए 50 रुपए. उसको पता है कि उनके ऐसे पोते हाय हेलो करने नहीं आते. तो मेरी दादी का बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि 3 दिन तुम मुझे मंदिर ले जाओ, 3 दिन मेरे पैर दबाओ, तब वो यहां से निकालती थी वैल्यू डेवलपर्स ज्वेलरी वाला जिसमें लिखा होता था खन्ना एंड सन्स, पर उसका के मिट चुका है तो वो अन्ना एंड सन्स बन चुका है. और ना उनके नोट कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होते, 10 का नोट 20 को हक कर रहा होता है ऐसे, 50 कैसे कडल कर रहा था घूम घूम के, 100 करोड़ तो कैप्चा कोड निकलते कैप्चा कोड ऐसे. कभी ऐसा हुआ कि आपके मामा ने पैसे धो दिए कपड़ों के अंदर? भाई साहब मेरी भी प्रो है, प्रो इतने नोट धो चुकी है, इतने नोट धो चुकी है मैम कि मैं जब नोट सुखाता हूँ ना तो उसमें गांधी जी के पीछे ले बाल गिले रह जाते हैं. ये बात तो गांधी जी कह रहे सर्फ एक्सेल निकाल मेरे मुंह से भाई, क्या करके मारेगा तू. Don't you know कि ट्रायल रूम इज अ प्लेस वेर यू कन्फेस दैट यू आर फैट, क्योंकि घर वाले शिशु को तो आप मना चुके हो कि आप फैट हो ही नहीं. ट्रायल रूम में ना इतना सा स्क्वायर बनाते हैं, क्यों इतना छोटा बनाते हैं, ताकि आप अपने मोटापे को कजीब से देख सको कि आप मोटे हो. आप जितनी बार कसम खा के और जितनी बार आपने कुंडी खोली है ना, आपने कहा आज से डाइटिंग काफी हो गया यार, जाता ये कब तक करूंगी मैं. कुंडी खोलता तुम्हारा हराम जाता दोस्त खड़ा होता भाई आज बटर चिकन खा के चलेंगे आज आज. एंड यू लाइक वी कैन नॉट बी हार्श ऑन अ वेरी फर्स्ट डे डाइटिंग कल से. तो जनरली मैम जो ट्रायल कपड़े ट्राई करने बोलते हैं, जब ट्रायल किया गोवा जाना था तो जनरली क्या था मैम, मुझे 32 वेस्ट आती है, मुझे 34 आ रही थी. मैं जो फूट फूट के रोया हूँ अंदर, मैं भटूरे तो मैंने 3 ही खाए थे उस दिन, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया. तो मैं तो कसम खा ली कि मैडम मेरे को तो कम करना है. एक तो ना तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम कह रहा, हमारे बीच में एक बंदा होता है हमारे ग्रुप में, हमारे बीच में होगा यहाँ पे, इन्हें गोवा जाना होता है. समझो इनके जीवन का सार है ये गोवा. मेरा दोस्त है, उसका सपना बचपन से सपना है, पैदा होते ही उसने गोवा ही बोला था. लास्ट ईयर उसके दादा की डेथ हुई है, कह रहा भाई गोवा चलते हैं.
कह रहा वहां से अस्थिया पास पड़ेगी, स्वर्ग पास पड़ता है। सर गोवा जाने के लिए डेस्परेशन देखो आप गोवा जाने के लिए। और फन फैक्ट बताऊं, जितने पांच लोग गोवा जाते हैं ना, पांच दोस्त जितने भी गोवा जाते हैं कभी भी, उसमें स्विमिंग सिर्फ एक को आती है। तो मैंने अपने दोस्त को भाई अगर डूब गए तो कह रहा पीठ पे राम लिख दूंगा। पर तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। और कई लोग होते तुम्हारे वो कहते हैं हमें ना आधी स्विमिंग आती है। ये सारे यूट्यूब पे स्विमिंग सीखते क्यों हैं? अब मेरा बोले कि मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। अबे थोड़ी थोड़ी कैसे आ सकती है? मैं थोड़ा तो प्लेन उड़ाना भी आता है। और फिर हम चार लोग ना ऐसे पानी में वह छप छप कर रहते हैं। क्या करें? एक तो तुम जितने नॉर्थ इंडियन गोवा जाते हो ना भाई, सभी अलग से दिखते हैं बंदे वहां। ये पहले थे कैपरी और उस पर थर्मस जैसा पेट। और ये बंदे ना वहां मरमेट की तरह मट्टी मिल जाते हैं ऐसे ऐसे। और वहां लिखते थे आई लव शालू दिल बना के। ये मैं बता नहीं कर रहा पानी में जरा हम टट होते बिल्कुल ऐसे, वहां कॉर्नर में छप छप कर रहे होते बैठ के, ऐसे लेट जाते हैं। अब पानी की भी आपको पता कि ऐसे उड़ना है, पर ये लेट गए वहां जाके। भाई साहब कितनी मछली होगी ना, मुंह तेड़ जाते हैं वहां पे। करे हे भगवान क्या था ये आदमी। ये बंदे अलग दिखते हैं यार, इनके नाभि के आधे बाल इधर कट जाते हैं, आधे बाल इधर कट जाते हैं। आप बता रहे हो मैं देखे हुए हैं यार ये। इन्हें कोई शर्म नहीं है भाई साहब, कोई शर्म नहीं है बुढ़ापे की। तुम्हारा एक दोस्त होगा पक्का, उसे बोला तुम मोटे हो। कहां मेरे सामने किया तूने यार ये। तो वी डिसाइड कि हम गोवा जाएंगे। तो मेरा दोस्त मोटा है, काफी मोटा है, पर भाई नहीं माना, कह रहा नहीं मैं इतना पतला ही हूं। तो ठीक है, हमने कोई बात नहीं। तो हमने कहा बॉडी बनानी पड़ेगी गोवा जाने के लिए। तो और मैम बॉडी हल्की नहीं, पीडीए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एप्स। मैम आपको पता है एप्स क्या होते हैं? मैं बताता हूँ। एप्स होते हैं जब आप यहां से पानी डालो ना तो जो सब नालियों पानी जाता है वो होते हैं एप्स। तो वी डिसाइडेड कि हम बनाएंगे एप्स। तो आप में से कितने लोग सुबह सुबह गर्म पानी पी रहे हैं, जस्ट गिव मी अ लाउड चीयर। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि बिस्मिल को संदेश दे देना कि अब गर्म पानी में ना जहर मिलाना बच गया है। ये लोग दुनिया की सारी औषधि मिला चुके हैं उसके अंदर यार, सिनेमन टू अंबुजा सीमेंट। गर्म पानी में मतलब खड़े मसाले बैठ चुके हैं भाई साहब। सुबह सुबह भैया पतले हो जाएंगे इससे। एक तो ना इंडिया में सिर्फ तीन चीजों भरोसा किया है हम लोगों ने, एक सचिन की बैटिंग, एक मारुति और तीसरा ग्रीन टी। जिस दिन समाज को पता लगा कि ग्रीन टी पतला करती है, लोग भटूरे के ऊपर पीनी शुरू कर दिए। पी रहे जा रहे हैं। और शुरू शुरू में क्या होता ना, और आपने ग्रीन टी पी सर कभी? कितनी घटिया टेस्ट करती है। मैंने पहली बार पी, मैंने कहा ई। तो मेरे दोस्त ने कहा क्या खो गया? मैंने कहा मेरे टेस्ट बड्स। लोग पी जा रहे हैं यार ग्रीन टी ग्रीन टी। और शुरू में ना जोर जोर पे हम ले आते हैं 100 का डब्बा एक महीने में। तना ना 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 ये सपने होते हैं हमारे। और फिर ना दिवाली पे मट्टी साफ करते ड्रॉर किया, यार निकालो मट्टी इसी से ग्रीन टी से, हमारे से नहीं होता ग्रीन टी। और कितने लोग जिम जा रहे हैं ईमानदार से बताना, जा रहे हो? देखो जिम में दो तरह के लोग जाते हैं, एक जो जाते हैं, दूसरे जो सिर्फ एनुअल मेंबरशिप देने जाते हैं। कह रहे भैया ये लीजिए एनुअल मेंबरशिप, ये है आपके प्रोटीन के पैसे, हम आए ना आए आपके डोले पे चकने नहीं चाहिए। मेरा कोच जब मैं चार साल से बंदा ऐसा था पतला सा, ऐसे फटके ऐसे बड़ा हो गया ऐसे ऐसे। आप देख रहे ऐसे बंदे होते हैं जिसकी नसें निकल होती है ऐसे ऐसे कर, देखा बॉडी? मैं कहा भाई साहब दिल्ली मेट्रो का रूट मैप दिख रहा तेरी छाती पे, इवन जो प्रपोज मेट्रो 2026 की वो भी दिख रही है, इतनी बॉडी बना लेते हैं लोग, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी डिसाइडेड कि जाना जिम। और देखो जिम जा रहे हैं ठीक है, तो मैं शुरू शुरू में गया जिम में। अब जिम में ना कोच का क्या होता, ध्यान होता है पीपीटी पे, यू नो पीपीटी, प्रोटीन एंड पर्सनल ट्रेनिंग। वो नहीं देते भाई तुम्हारे दीवार में, तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम कुछ भी करो, फिर तुम दीवार में सर मारो हो जाएगा, वेट कम हो जाता है इससे। उन्होंने ध्यान नहीं देना आपको। तो मैं पहली बार क्या वक्त तो कह रहा, ओह आपके गोल क्या हैं? तो मैं कह रहा, ये गोल है ना, इसको समतल करना है। कह रहा नेचुरली? मैं कहा हाँ। कह रहा ओह प्रोटीन? मैं कहा नहीं। तो कह रहा आप डिप्स मारी जाके? तो मैं डिप्स मारा, तो मैं मार के आ गया। मैं कहा सर मैंने मार लिए। कह रहा कितने? मैं कहा 1000। कह रहा एक्सक्यूज मी? मैं कहा एक्सक्यूज। कह रहा कितने? मैं कहा 1000। कह रहा श्योर? मैंने कहा पीडिया श्योर। कह रहा एक बार मार के दिखाओ। मैं कहा ये लो 1 2 3 4। कह रहा ओ कोयल तेरी बोली कुकु कुकु। ये कुकु कुकु क्या कहे? इसे तेरी गर्दन बन जाएगी। मेरा कुछ तो बन रहा है ना। आई बिलीव इन रिजल्ट। अब 3-4 दिन में ऐसे कर रहा था। अच्छा गिव मी अ लाउड चीयर। जो कोच होता ना, कोच तुम्हारे हिसाब से होती है बॉडी, इनके हिसाब से होती है बॉडी। इनके मुझसे बॉडी निकलता क्योंकि इनके ना प्रोटीन भरा रहता है। दांत ले जा बॉडी बना का बॉडी। तेरे भाई ने बॉडी बना लिया बॉडी। ये अलग दिखते अलग बात है। मेरे पास आता ना हर हफ्ते आता है क्योंकि मुझे प्रोटीन बेचना है उसको। तो मेरे पास आकर रजत योर बॉडी भूल रहा हूं। कह रहा योर बॉडी इज लाइक ए टेम्पल। तो मैं कहा मेरी बॉडी से भगवान जा चुके हैं, वो ऋतिक रोशन की बॉडी में ट्विन शेयरिंग में रह रहे हैं। करजत बॉडीज आर मेड इन किचन। मैं कहा सो इज भटूरा। इन्होंने प्रोटीन बेचना भाई साहब, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना इन्होंने। तो मैं शुरू में कहा, मैंने कहा भाई साहब तो मेरे को कह रहा यार, मैं कहा 3 दिन से जो डिप्स मार रहा हूं कुछ तो नहीं कराओ। करा आप स्किपिंग करो। तो फिर मैं 3 दिन बाद जिम गया। ऐसी ऑडियंस बहुत है जो सोच रही है क्या हुआ। कोई दिक्कत नहीं, करो LP यूनिवर्सिटी से पढ़ाई एमबीए। यही होगा। फिर मैं बस आया, पता एक बार, अच्छा जिम में ना शुरू में हमें, अच्छा जिम में ना मैं बनाता छोटू, शुरू में पतलों को बनाता छोटू। पता छोटू जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर नहीं होते, जिनके शकरकंदी जैसे हाथ होते हैं, इन्हें वेट उठाने में हेल्प करनी होती है। और ये बंदर जिंदगी में सारा वेट उठा रहे होते उसी दिन, सारे आदमी कोच भी लटका हुआ उसी पे। तो कह रहा भाई साहब मैं आह करूंगा तो आप वेट ऊपर कर देना। अब फन फैक्ट है, वो था रहा 120 kg, मेरा खुद का है 65। और आपको पता जिम में बसता हनी सिंह और हर गाने में आह आह तो आती रहती है। तो भाई साहब उसकी आह हुई और इसकी आह निकलती रही। 120 पूरा चेस्ट पे डायरेक्ट, परमानेंट लाइन बन गई है परमानेंट। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट चलान करा कर भाई साहब, डेंगू भरा रहेगा, पानी भरा रहता है आपके यहाँ पे। अब तो प्रोटीन की सप्लीमेंट कैप्सूल ही रख लेता, यही रख लेता भाई साहब। आप उतना सिंगार का सामान, आपका वो कंगी वंगी सब रख लेता यहीं पे भाई साहब। दिखा रहा था मुझे एक दिन, कह रहा देखो अपना खुद की दुकान। डिफिकल्ट होता भाई साहब, डिफिकल्ट। और अब देखो बता, अब मेरे पास एक बार आया, एक तो बताऊँ भाई साहब मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें जितने लोग भी जिम जा रहे हो, जिम के कलेक्शन अलग ही चल रहा कपड़ों का। दुनिया में जितने भी फ्लोरोसेंट कलर पैदा हुए हैं जो आंखों को चौं कर दें, चौं ऐसे तोतीले लाल ब्लू, बंदा पूरे कलरफुल बन रहा है। ऐसे बंदे ट्रेडमिल भाग रहे हैं, ऐसे बैकवर्ड ऐसा रहता है पीकॉक भाग रहा है। और पीछे गाना चल रहा है किथे चलिए मोरनी बाढ़। मेरे जिम पे तो औरतें आती हैं, औरतें -1 पे चलाती है ट्रेडमिल, -1 पे। भाई साहब तो तिलक सारे कलर पहन मारे लोगों ने, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। सैटेलाइट में ऊपर बंदे बैठे होते, भाई साहब कौन है तिलकपुरी में घूम रहा है ये बंदा? कौन है ये? काम नहीं हो रहा भाई साहब, शीशा नीचे करो। अलग लेवल पे चल रहा है यार। और फिर मेरे पास एक कोच आया, तो कह रहा रजत भाई साहब सुनो मेरी बात, तुम्हारे को बॉडी बनानी है ना, अगर बॉडी तो आपको बहुत प्रोटीन खाना पड़ेगा, प्रोटीन। तो ना एक बार डब्बे ले आया सर इकट्ठे रख के, छोड़ो डब्बा, तीन डब्बे चार डब्बे से प्रोटीन, एमसीसी बीसीसी ये कैप्सूल के नाम होते हैं, सारे लेके आया ऐसे डब्बा। और जिम में ना सबसे जो फिट बंदा ना, सबसे फिट बंदा जिस सबको देख के लगता है यार काफ़ी है ये पूरी बॉडी से बिल्कुल। आप देखा मैम किसी, कई बंदे होते हैं जो सिक्स पैक वाले बंदे होते हैं, जो आपने टीवी में देखे होंगे मैक्सिमम वही देखा होगा, या रियल में कभी जिम में एक बंदा मैंने वो देखा पहली बार, मतलब उसकी बॉडी में कैसे बताऊँ आपको, उसकी बॉडी ऐसी थी कि अगर आप ट्रेसिंग पेपर रख के उसको पेंसिल घिस दो तो पूरी बॉडी बाहर है इसकी, इतने प्यारी बॉडी उसके भाई साहब। करा यू सिक्स मंथ बॉडी समझ रहे हो, वो बिफोर आफ्टर कैसे उसके नहीं था, उसका कॉन्सेप्ट नहीं था उसके पास। करा बॉडी ओ मगन, मैं का डब्बे हटाओ तीन चार पहले, खाना भी खाना है हमने, फिर आप फिर नो बॉडी मगर नहीं हमें नहीं बनानी भाई सब बना लेंगे। तो मेरे को जरा रजत देखो ऐसा होता है जो एक्सरसाइज होती है ना, इट्स अ माइंड गेम, इट्स नॉट जस्ट कि आप कुछ भी कर लो, ना ना इट्स अ माइंड गेम। तो मैं नेक्स्ट दिन आया, मैंने योगा मैट बिछाई वहीं सो गया फिर आया ओ कोयल सी तेरी बोली ओ कुकु कुकु ओ करा क्या, मैं कहा मैं माइंड में रनिंग कर रहा हूँ और मेरे भी स्टेप पूरे होने वाले हैं। आप ऐसे कोई जो फिटबिट यूज़ करता है आई नहीं पाए होंगे, स्टेप पूरे कर रहे होंगे यू हैव टू ट्रैवल 15,000 कदम एक दिन में। मैम मैंने पहले दिन लिया, ओ भाई साहब शुरू में जोश इतना होता है, पहले दिन अपने ऑफिस के नीचे मैंने कहा हे दोस्तों आज हम पैदल जाएंगे ऊपर, तो मैं दोस्त कहा हे दोस्त तू अकेले ही जा तो मैं चला गया भाई साहब थर्ड फ्लोर पे। मैं आई रियलाइज कि मेरा ऑफिस 25th फ्लोर पे है जो 23-24 रेंगता हुआ गया, रेंगता हुआ ऐसे रेंगता हुआ, जैसे पहुंचा सतोष करे हे मतलब थैंक यू करे भाई लंच ब्रेक हो गया तू अब आया है। शुरू के 5-6 दिन तो भाई साहब ट्रेडमिल पर आप इतना भागता आदमी, आपको 5-6 दिन तो आपको पता कि फिटबिट है तो आप कदम पूरे कर ले भागते हो। मैं तो इतना भागा भाई साहब इस पे आ गया फिटबिट पे लिखा डूड यू शुड टेक ऑटो नाउ, मैं थक गया, मैं इतने स्टेप मैं भी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा और डिफिकल्ट है ना। ना मैक्सिमम क्या करते हैं नॉर्थ इंडियन लड़के, दो लड़की बैठी होती उल्टी लेटी होती हैं और ये जो कहेंगे भाई फोटो खींचते जल्दी 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 फोटो खींचते ये करवाने जाते हैं वहाँ पे भाई साहब। अब देखो मैं तो मैम देखो जिम जा रहा हूँ रेगुलरली, सब कुछ कर रहा था, ग्रीन टी सब चल रहा, मैं हेल्दी डाइट पे आ गया था, मतलब रोज ब्रोकली के पराठे हाँ तो ब्रोकली के पराठे, गरीब पता ही नहीं ब्रोकली क्या होती है ऐसे पहले फॉर्म भरवा लिया करें इससे ग्रोप रखी यार पहले इससे पूछ रहा कह रहा ब्रोकली क्या होती है, गरीब आदमी गोभी को पेंट नहीं करते वो हरा, हेलो आइडिया नहीं है लोग गरीब आदमियों को यार, इट्स फाइन यार इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम मेक श्योर यार इट्स फाइन ब्रदर कोई बात नहीं, आज आज आइडेंटिटी मिल गई है, शॉर्ट्स में आए हो आप ओहो पर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपको, ऐसे घर से तैयार होके आप कैपरी में निकल आए ऐसे स्कूटी पहन के, गर्मी तो गर्मी मतलब फिर थोड़ी और पड़ गई तो ऐसे लोगों को डर लगता है मुझे पता है ये समाज के एंटी जा रहे हैं ये आप क्या इनकी छोड़ दो बहन बता रहा हूँ छोड़ दो बता रहा हूँ ऐसे भाई की तरह समझा रहा हूँ भाई की तरह समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये जो कैपरी का सगा नहीं है बैंड का सगा नहीं है बंदा स्कोर ये किसी का सगा नहीं होते भाई साहब, ये बाइक और बाइक की तुम्हें चेक करना इस बंदे को ठीक है नहीं है, इसे एक दिन राजीव चौक ले जाओ, राजी चौक पे गेट खुलने और बंद होने तक इसका हाथ पकड़े खड़े रहो, अगर ये खड़ा रहा और हाथ नहीं छूटा कर लो शादी बता रहा हूँ छैन नहीं बनानी भैया खड़े होकर छैनी बना रहा है कह रहा हूँ चेक ले लिया कर भाई ऑडियंस का, मैं बता रहा हूँ पता नहीं था इसका ब्रोकली फिर छैनी बनाने लगा यार tough to do this kind of performance in front of काफी अलग लोग यार बट जल्दी भाई देखो मैम गो जाने का टाइम आ रहा था, मैं तो रोज सुबह मैम बिल्कुल ऑयली तो बिल्कुल नहीं पानी में तले समोसे खाए मैंने पानी में तले समोसे तो मैं वापस गया ट्रायल को मैं कपड़े ट्राई करने के लिए, ओ भाई साहब अब बंदा इतनी मेहनत करे तो क्यों नहीं आएगी, 32 जीन्स में वापस आ रही थी मैडम एफर्ट देख रहे हो आप, अच्छा खाना खाए बंदा, मेंटेन करे अपने आपको, 32 दिन वापस, मैं तो अंदर मोर बन के नाचा हूँ उसके, जगह इतनी होती है उसमें, जगह इतनी होती, क्या करेगा आदमी, ऐसे नाच सकता है इतना इतना। हाँ बाहर निकलते हमारा सेल्स पर्सन का माथा चुमाने का, भैया फाइनली आई डिड इट। तो कह रहा भैया एक बात बताएं, इधर आओ। मैं कहा, कह रहा वो ब्रांड वाइज साइज वेरी करता है। मैं कहा हराम जादे ये बात नहीं बतानी थी बस तुझे, वरना मैं गोवा चला ही गया था। अरे टफ रहता है यार बड़ा, बता वेट लूज करना आसान काम नहीं, बता आपको। अगर आपको पता डाइटिंग और सपने के बीच में फर्क क्या है, सपने पूरे हो सकते हैं, डाइटिंग नहीं भाई, सब लोग कर रहे हैं सालों साल करते रहेंगे, मैं तो हॉबी बना लिया, हॉबी वेट लॉस हॉबी है मेरी, हॉबी।
अच्छा कोई मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पे? वाह कितने हम्बल हो गए, एटलीस्ट आपको पता है। मैं चंडीगढ़ में था, किसी ने माना ही नहीं, मेरा सेट खत्म हुआ तब खड़े हो गए थे, हाँ ब्रो तो हमारी बात कर रहा है। पर उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ना मिडिल क्लास इट्स नॉट अ फाइनेंशियल स्टेट, इट्स अ मेंटल स्टेट। मेरी चाची ने कनाडा में कोठियां बना ली हैं, वो अभी भी पॉलिथीन गद्दे के नीचे रखती है कि बारिश आई तो पहन लेंगे। So I'm a middle class sardar, which is a horrible combination. क्योंकि being sardar थोड़ा swag, थोड़ा show off, गाड़ी के नीचे neon light जरूरी है। Being middle class resources नहीं है। हम वो लोग हैं जो iPhone 8 release होते ही 7 book कर लेते हैं। हम sedan खरीदते हैं, second hand, फिर उसमें CNG लगवा लेते हैं। दिल्ली में किसने हमर में CNG लगवा ली? मदर फकिंग हमर गाइस, वो गाड़ी फ्लाईओवर से वापस आ गई। स्पीड ब्रेकर थोड़ा ऊंचा हो ना, एसी बंद करना पड़ता है। तो मैं मिडिल क्लास हूं, तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली भी मिडिल क्लास है, इनफैक्ट दे आर द रीजन आई एम मिडिल क्लास। तो ना घर में कुछ भी चीजों मिडिल क्लास घर में सब थोड़ी थोड़ी मिडिल क्लास से झलकती है, जैसे कुत्ता लेना, कुत्ता ये नहीं कि अल्सेशियन लैब्राडोर पूडल, नहीं कुत्ता लेते पमेरियन, और वो भी खरीदा नहीं है, तुम्हारी अंबाले की मासी कुत्ती ने 6 पिल्ले दिए हैं, जो 3 दादा की साइड आ गए 3 नाना की साइड। इतना सा कुत्ता ले है 7.5 इंच का पमेरियन, उसका नाम रख दिया पेप्सी, क्यों? क्योंकि पापा पी रहे थे। इतना सा कुत्ता है 7.5 इंच का, किसके लिए लाए? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। मैंने कहा पापा दिवाली पे बिजली बम भी फोड़ू ना, पेप्सी की गैस बाहर आ जाती है। घर में कोई गेस्ट आया हो ना, पेप्सी को हाथ में उठा लेते हैं, उसके लेफ्ट पैर पकड़ते, कहते पेप्सी जय करो, पेप्सी जय करो। ये तो कुत्तों की बात हुई मिडिल क्लास घर में। मुझे लगता है जैसे जैसे हम इंटेलेक्चुअल होते रहते हैं, रईस होते रहते हैं, हम कुत्तों के आईक्यू को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। मैं साउथ दिल्ली में था, देयर वाज अ ब्यूटीफुल वुमन टॉकिंग ऑन फोन, कुत्ता उसके लेफ्ट लात पे लिपटा और हम करने लगा। जिन्होंने वो किया उन्होंने कुत्ते देखे हैं। बुरी तरह हम कर रहे हैं, मैम कहती है ब्रूनो दैट्स नॉट फनी, ब्रूनो नोबडी इज लाफिंग, इट्स नॉट फनी। ब्रूनो चुटकुला नहीं सुना रहा है, ब्रूनो ठरका हुआ है। उन्होंने अपने दोस्तों में जैम नहीं किया था, ब्रो मैम की लात पे जाकर मैं यूं यूं करूंगा, फट से हंस पड़ेंगी। पर गलती उसकी नहीं है, आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो कि कुत्ते में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि उसे पता हो ये गलत है। गुड़गांव में लड़कों को पीछे से पता चला है। जब मैं गुड़गांव में शो करता हूं मैं नोएडा बोल देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स लेने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स, रईस आदमी फ्रिज क्यों खरीदता है? कि बर्फ जमा ली, बियर ठंडी कर ली, किसी पे गाड़ी चढ़ गई उसकी लाश रख ली। मेरे घर में फ्रिज क्यों है? दही जमानी है। सेम सब्जी अपने लड़के को 3 दिन खिलाऊंगी। मम्मियां बहुत हिपोक्रेट होती हैं यार, मिडिल क्लास मम्मियां। मैं अपने घर गया बहुत टाइम बाद, मैंने फ्रीजर खोला, हाथ में बहुत सारे काजू भरे और खाने लगा। मम्मी दौड़ते हुए 85% काजू वापस पैकेट में डाले और कहती सनी इतने ड्राई फ्रूट मत खा, मुंह पे दाने हो जाएंगे। एक मिनट, जब मैं 4 दिन पहले 3 रुपए किलो मूंगफली खा रहा था तब आपको मेरे सौंदर्य का ख्याल नहीं आया, तब तो आपने 2 गत्ते के डब्बे और दे दिए कि सनी पिछले साल के पति से बचे हैं। काम वाले की दूंगी, उसका पेट खराब होगा, 2 दिन आएगी नहीं। So I'm in a long distance relationship with my parents. वो दिल्ली में रहते हैं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। तो मेरी मम्मी दिन में मुझे 15 बार कॉल करती है, सनी सेविंग कर ले, सनी सेविंग कर ले, सनी कुछ मत कर बस सेविंग कर ले। मैंने उनका फोन उठाना बंद कर दिया, मैंने कहा सबसे पहले टाइम सेव करते हैं। मेरी इन्फोसिस में 15,000 की नौकरी लगी है यार, कह रहे 5,000 घर भेज। मैंने कहा 10,000 आप मुझे भेजो। मिडिल क्लास की एक और बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट वी नेवर एक्ट आवर वेल्थ, मतलब जितना हम रईस होते हैं वी नेवर एक्ट इट। जैसे खाने का बिल भरना है, आप किसी कोई आपका बनिया फ्रेंड हो साथ में बोलो कि ब्रो मजाक में ब्रो तू सारा भर देगा, गरीब आदमी की गांडी मार लो। उनका गरीब आदमी, हम दोनों सेम पोस्ट पे काम करते हैं, तू बनिया तू टैक्सेस में भी अच्छा है। मेरे पापा अपने जूनियर के घर गए, 350 गज का फ्लैट है उसका, कॉन्डो। उसके घर में घुसे अंकल, घुसते कहते हैं आप इस गरीब की कुटिया में आए, हमारे तो भाग खुल गए। उनका कुटिया, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, वहां पे मैं 75 गज के फ्लैट को पेंट हाउस बुलाता हूँ, और टिंडर से कोई बंदी आ जाओ फिर भी कहते हैं जस्मी दिस बिगर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सैडली दैट्स द ओनली टाइम शी सेज इट। बनिया लोग मुझे लगता है वो जो फैंटेसाइज भी कर रहे होते हैं ना, देर नॉट फैंटेसाइज अबाउट द गर्ल, आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। बनिया बंदा किसी बंदी को लेके भी फैंटेसाइज कर रहा होगा ना, कहेगा ओहो क्या टी शर्ट है, टी शर्ट के अंदर ब्रा है, ब्रा के अंदर पर्स है, उसमें 10-10 की घड़ियां। लाइक अ डूड स्टॉप एट द ब्रा फॉर वंस, 20-20 रुपए के नोट। लोग अंधविश्वासी होंगे, डिग गया बच्चा।
तुम लोगों से कितनों ने वीडियो देखा है मेरा, जस्ट मेक सम नॉइस ना। अच्छा अच्छा ओके नाइस। सो वन लास्ट थिंग देन आई लीव, ठीक। व्हेन आई अपलोडेड माय वीडियोस ना, दिस वियर्ड थिंग हैपेंड, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट टू। पीपल वर मैसेजिंग मी एवरी अदर डे आस्किंग मी हाउ हाई, आई वॉज when I was shooting the videos, which was weird because they were not asking if I was high. That they were sure about. वो बस जानना चाह रहे थे कितना, मात्रा बता दो बस। Which was interesting because I was not. Right? I'm not never high on stage. I like to be in control. Also, वैसे भी I don't do drugs. नहीं नहीं करता मैं, क्या है ऐसे क्या। लाइक स्मोकिंग अ जॉइंट इज नॉट बैड, डूइंग ड्रग्स राइट, हार्ड ड्रग्स, आई डोंट डू हार्ड ड्रग्स, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एक्चुअली देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। यू गाइस अप फॉर अ स्टोरी?
यस,
यू आर फॉर अ स्टोरी राइट? हां, कहीं चले जाओगे? लाइक यू हैव एन ऑप्शन? नो, चलो सुनो। This happened in MBA final year. Final मतलब दो ही होते हैं। इतना वियर्ड होता है ना MBA, कि अभी तो फर्स्ट ईयर ही है, फक फाइनल आ गया, एकदम तेजी से एस्केलेट हो जाता है. एनीवे सो MBA सेकंड ईयर, एंड दिस इज व्हेन आई रियलाइज दैट MBA इज नथिंग बट अ स्कैम. क्योंकि इनिशियली उन्होंने बोला था कि 2 साल का कोर्स है, और फिर ठीक 1 साल 6 महीने बाद देवर लाइक हो तो क्या, अब सिम कार्ड बेचने के लिए कितना पड़ोगे तुम्हें, बड़े हार्ट ट्रांसप्लांट करने, डिग्री पकड़ाई भगा दिया उन्होंने हमें. एंड वी वर नॉट रेडी राइट, बिकॉज इट्स द फाइनल ईयर ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद तो फिर सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. तो क्या हो गया, याद दिला दी. अच्छा अच्छा, अरे आई अंडरस्टैंड. हाँ बट सीरियसली, आखिरी साल था तो वी वर नॉट रेडी, तो काफ़ी उदास हो गई थी जनता, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. ठीक है, पर फिर एक ग्रुप में एक बंदे को ये आइडिया है कि यार हमारे घर वालों को तो नहीं पता है कि कोर्स खत्म हो चुका है, तो अगर हम चाहें तो 6 महीना और अय्याशी काट सकते हैं यहाँ पर. और खुली बाहों से स्वागत हुआ इस विचार का, जनता में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई. और 3-4 महीने तो बहुत अय्याशी काटी भी हम लोगों ने, पर फिर क्या हुआ, घर पे किसी तरह खबर पहुंच गई, और उन्होंने वो ही किया जो वो कर सकते थे, पैसे भेजने बंद कर दिए उन्होंने. विच इज सच अ फक ऑल वे टू पेरेंट राइट, तुम्हारा जवान लड़का घर वापस नहीं आ रहा, तुम बात करो उससे, प्रॉब्लम पूछो, समस्या की जड़ तक जाओ, ये क्या तरीका है, पैसे बंद कर दो, भूखा मरेगा खुद आएगा. ये क्या तरीका होता है. एनीवेज, पैसे आने हो गए बंद, हम हो गए कंगाल सारे एक साथ. ठीक है, पर नशा चाहिए था रोज, तो अब हम रोज नए सस्ते जुगाड़ ढूंढते थे, और फिर आई वो काली रात जब नशा करने के लिए हम 6 लोग थे और हमारे पास टोटल रुपए थे 10. अब इस संकट की घड़ी में सामने आए आशुतोष शर्मा, और आशुतोष शर्मा ने ये विचार प्रस्तुत किया कि मैं एक बंदे को जानता हूं, वो भांग के गोले बेचता है, 1 रुपए का 1 गोला आता है, और तुम्हारे होश उड़ाने के लिए काफी है. और खुली भावों से स्वागत हो इस विचार का, क्योंकि वी वर इन अप्रूविंग लॉट. ठीक है, अब यस कैन डू वाला एटीट्यूड था हमारा. नहीं एक्चुअली बस 5 लोग ही माने थे, छठा जो था ना भारत भूषण तिवारी, एंड यस ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू जस्ट इमेजिन, वैसा ही हो. भारत भूषण बोला कि नहीं यार, आई वुड लाइक टू एक्सक्लूड माई सेल्फ फ्रॉम द प्लान, क्योंकि मेरे एक मामा हैं, उन्होंने एक बार भांग खाई थी और वो पागल हो गए थे. And we were like, fuck off, Bharat Bhushan, we don't care. That's just more bhang for us, dude. अब 10 लोग 5 लोग 10 गोले है ना, मैच भी इजी हो गए अब तो, कुदरत का इशारा है, भगा दिया हमने Bharat Bhushan को लात मार. फिर गए आशुतोष शर्मा चीते की रफ्तार से, 10 गोले लेके वापस आ गए. अब हम 5 लोग ऐसे भांग का गोला हाथ में लेके एक सर्कल में खड़े हैं, क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं है भांग खाई कैसे जाती, किसी को आइडिया नहीं था. इस संकट की घड़ी में सामने आए विवेक ठाकुर. विवेक ठाकुर बंदा था, उससे हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी कॉलेज की पहली पार्टी में हम मिले थे, वो एंटर हुआ पार्टी में, अपनी जेब से रॉयल स्टैक का आधा निकाला उसने, खोला, खत्म किया, और फिर बोला चलो अब दारू पीते हैं. तो हम वहीं लेट गए थे उसके चरणों में, और 2 साल वहीं रहे. फिर क्या आप ही हो अब तो, गुरुजी थे हमारे, तो गुरुजी ने बोला था ऐसे घबराने कोई बात नहीं, भांगी तो है, एक काम करो, ये जो गोला है उसको मुंह में डालो, चबाओ, पेस्ट बनाओ उसका, और निगल लो, अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा. और हम भक्त थे, हम तो उन दिनों भक्त थे, जब कोई नहीं था, वी वर द हिपस्टर्स, हम घटक गए और पांच मिनट एकदम सन्नाटे में बैठे रहे. ठीक है, ठीक पांच मिनट के बाद खड़े हुए हिमांशु गोयल और उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि क्योंकि हम लोग इतने बड़े नशेबाज दरोड़ टाइप के लोग हैं तो हमारी ना इम्यूनिटी बहुत बिल्डअप हो गई, तो ये जो भांग का गोला गया है अंदर ये लड़ नहीं पा रहा उससे, ये बेचारा कमजोर है, तो इसकी मदद के लिए जो दूसरा बाहर पड़ा हुआ है उसे भी अंदर डाल देना चाहिए और खुली बाहों से स्वागत हो इस विचार में. मना तो गया नहीं किसी चीज के लिए. एक्चुअली मैं उन लोगों को बताना चाह रहा था कि मैंने कहीं सुना है कि भांग थोड़ा देर में असर करती है, पर लड़के बहुत पंप अप हो गए थे. ठीक है, एकदम वाइब बहुत अच्छा था, ऐसे मैं बिगाड़ना नहीं चाह रहा था, तो हम दूसरा गोला भी घटक गए. और फिर विवेक ठाकुर हमारे गुरुजी गुड़ ले आए कहीं से कि मीठा खाओ चार चांद लग जाएंगे, और गुड़ भी चबा लिया हमने और 10 मिनट एकदम सन्नाटे में बैठे रहे. ठीक, ठीक 10 मिनट के बाद खड़े हुए वरुण नरुला और फूट फूट के रोने लगे, झार झार आंसू बह रहे उस आदमी के. पूछा क्या, बताओ क्या तकलीफ, बताओ. तो कहते हैं ये पीछे शारदा हॉस्पिटल है, अभी खुला होगा. हो भी सकता है. तो प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है. तो कहते हैं यार मैं ना एक्चुअली पागल हो रहा हूं. प्रोसेस शुरू हो गया है, अभी हुआ नहीं हूं तो खुद ही बता रहा हूं. 10 मिनट और हो गए तो मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं और तुम समझ नहीं पाओगे. और 1947 से करोल बाग में नरुला ड्राई क्लीनर्स है, हमारा बहुत नाम है दिल्ली में. अगर लोगों को पता चल गया कि वरुण नरुला भांग खा के पागल हो गया है तो बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी, तो अभी ले चल. आशुतोष शर्मा आए उनको समझाने के लिए, पर कुछ तो हो गया, पासा उल्टा पड़ गया. वरुण ने आशु को समझा दिया और वो भी फूट फूट के रोने लगा कि इज्जत तो हमारी भी कम नहीं चंडीगढ़ में. तो शारदा हॉस्पिटल तो हम भी जाना चाहेंगे. ये सब चल रहा है वहां पे, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे को कुछ हुआ नहीं था अभी तो मैं हवा में उड़ रहा हूं इधर उधर कि भाई क्या स्टार्ट आदमी, बड़े बड़े लोग फेल हो चुके. पर ज्यादा देर खुशी रही नहीं मेरी. मेरा ना फोन बजा, फोन उठा के मैं गया बैल्कनी में बात करने के लिए. बात करके वापस आया, फोन टेबल पर रखा मैंने. फोन रखते ही मेरे को ऐसा लगा कि ये जो फोन अभी आया था ये आया नहीं था, ये बस मैंने इमेजिन किया था. मेरी गांठ फट गई. फोन उठाया, कॉल लॉक चेक किया मैंने, तो फोन आया था. पर अब ना हर 5 मिनट ये साइकिल शुरू हो गया. एवरी 5 मिनट्स मेरे को ऐसा लगता था कि पिछले 5 मिनट जो कुछ भी हुआ वो हुआ नहीं, वो बस मैंने इमेजिन किया. तो मैं लोगों को पकड़ पकड़ के उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा था उनसे कि तू 2 मिनट पहले वो बीन बैग पे बैठा हुआ था क्या, तूने अभी फ्रिज से पानी पिया था 1 मिनट पहले. मैं सारा घर का रोना धोना बंद हो गया कि उनको समझ में आ गया कि आदमी के साथ कुछ नेक्स्ट लेवल हो गया. हमें तो बस लग रहा है कि हम पागल हो रहे हैं, ये हो चुका है, ये चला गया उस पार. मेरे को भी लग गया कुछ तो प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ, तो मुझे लगा मेरे को निकलना चाहिए यहां से, ये पागलों के साथ रहूंगा मैं भी पागल हो जाऊंगा. घड़ी देखी मैंने, रात के 3 बज रहे थे. ठीक है, तो मैंने बोला उनसे कि गाइज आई थिंक आई शुड लीव नाउ, काफी लेट हो गया है, रात हो गई, सुबह मुझे जॉगिंग पे भी जाना है. काफी टाइट शेड्यूल है मेरा कल. करके मैं निकल रहा हूँ, गेट पे खड़े हैं विवेक ठाकुर हमारे गुरुजी, चप्पलों में, बस बस चप्पलों में. कंधे पकड़ लिए वो आदमी ने मेरे दोनों. कहाँ जा रहा है? मैं कहा तुझसे दूर. क्या चल रहा है यहाँ पे? कहता है आज मत जा. मैं कहता आज ही तो जाना जरूरी है. हाँ तो जाना पड़ेगा. कहता डर लग रहा है. मैं कहा गुरुजी फेल हो गया यार, तो कान फट गई मेरी. धक्का मारा उसे बाहर भाग गया. अब वो लोग रहते थे थर्ड फ्लोर पर, मैं बाहर खड़ा हूँ. यहाँ लिफ्ट है, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, और मैं बीच में खड़ा होकर सोच रहा हूँ कि मैं लिफ्ट से जाऊँ या सीढ़ियों से. क्योंकि अगर मैं लिफ्ट से गया तो लिफ्ट तो नीचे जाती ही जाएगी, वो रुकेगी तो नहीं, क्योंकि अर्थ का कोर तो बहुत नीचे है. और सीढ़ियों का क्या है, वो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगी. सीढ़ियाँ तो सरफेस के ऊपर बनी होती है ना, वो नीचे थोड़ी जाती हैं. मैं ये सोच रहा हूँ वहाँ खड़े खड़े, ठीक है, कॉन्टेम्प्लेट कर रहा हूँ. इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया. लिफ्ट में से निकला शैंकी. शैंकी हमारा दूध वाला था. शैंकी बाहर आया, मैं बोला तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? रात को 3 बजे कौन दूध देने आता भाई? कहता भैया क्यों मजाक कर रहे हो, सुबह के 6 बजे. तीन घंटे से खड़ा था मैं सर. मैं भागा वापस. आशुतोष शर्मा वरुण नरुला को उठाया मैंने और बोला सुनो वो शारदा हॉस्पिटल है ना पीछे, अभी खुला होगा.
थैंक यू.
चलो सुनो फिर. आई वेंट टू दिस फैमिली रियूनियन रिसेंटली एंड आई फाइनली फिगर्ड इट आउट. यू गाइस कैन यूज इट इफ यू वांट टू. ठीक है, द नेक्स्ट टाइम अ रिलेटिव आस्क दैट स्टूपिड फकिंग क्वेश्चन नो कि कितना कमा लेते हो, दिस इज व्हाट यू डू. ओके, यू टेक 100 रुपी नोट आउट ऑफ योर पॉकेट. Keep it right in front of their face. And then you light that note on fire. और ऐसा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, ठीक है ना? ऐसा 400-500 का खर्चा है फिर नहीं पूछता कोई. और मजा भी आता करने में. मेरे यहाँ ना कोई कोई शो ऑफ नहीं कर पा रहा, पता है? मेरे कजिन लोग अपना आईफोन निकालते हैं, मैं 100 का नोट और लाइटर निकाल लेता हूँ. वो डाल लेते वापस कि नहीं नहीं भैया नहीं. लेकिन नहीं कैसे निकाला, कैसे तूने मेरे सामने? अब देख लक्ष्मी को जलते हुए बंटी. फिर उसके पापा आ गए भागते हुए. कैसे 8 साल के बच्चे के साथ करते हैं कोई ऐसा? मैं कहा 8 साल के बच्चे को आईफोन भी नहीं दिलाते, चूतिया चाचा. आठ साल के बच्चे को आईफोन दिला दिया उसने यार. मैं 8 साल का था ना, मुझे कभी कभी लगता था मैं हूं भी. इतना कॉन्फिडेंटली इग्नोर करते थे मेरे को, मुझे एग्जिस्टेंस पे डाउट हो गया था. पर फिर जब मैथ्स में नंबर नहीं आते थे और थप्पड़ पड़ते थे तब लगता था यार हूँ तो सही. इतना तो इमेजिन नहीं हो सकता, उंगलियां तो 5 ही छपी हैं. 8 साल के बच्चे को आईफोन दिला दिया उसने. 8 साल के बच्चे को एक ही चीज़ दिलाई जानी चाहिए, उसकी औकात की याद. कि है कौन भोसड़े के तू? आईफोन फुल पैंट तो पहन ले पहले. अरे बच्चों वाली हरकत कर, मिट्टी विट्टी खा कहीं जाके. 8 साल के बच्चे को आईफोन दिला दिया यार. मैं 8 साल का था ना. माचिस का बड़ा वाला डब्बा नहीं आता है, हाँ, जब खाली हो जाता था तो उसका अंदर वाला पार्ट से बाहर निकल जाता है ना, तो उसका ऐसे बाहर निकाल के स्लाइडर फोन बना के खेलता था मैं. पूरे पूरे दिन कान पे लगाए घूम रहा हूँ उसको कि पेशेंट को 2 बोतल खून चढ़ा दो, चढ़ाओ चढ़ा दो. है पेशेंट को जुकाम है बस, तो गरम करके चढ़ा दो, बेचो क्या हो गया. तो यार बेसिक से क्लियर नहीं है तुम्हारे, छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा. एमिटी पास आउट हो गए तुम. कहां से किया एमबीबीएस, कहां से किया? यही कर रहा होता यार पूरे 8 साल के बच्चे को आईफोन दिला दिया उसने यार. पर चल रहा है मेरा हैक, बहुत बढ़िया चल रहा है वो नोट जलाने वाला. हाँ ट्राई करके देखो तुम लोग, मस्त मजा आते हैं. जैसे पिछली गैदरिंग में भी वो पड़ोस वाले अंकल शुरू हो गए कि हमारा लड़का गूगल में लग गया है, आपका क्या कर रहा है? हमारा लड़का आपके लड़के मुंह पे नोट जला रहा है, पीछे देखो. मुड़ के देखो छाबड़ा साहब, आपका लड़का बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है. गूगल पैंट में निकल गया सर उसका. चल रहा है मस्त चल रहा है. एक और बताऊं, एक और हैक बता दो. यू गाइस लुक लाइक ए स्वीट क्राउड, लेके जाओ. मेरे यहाँ ना मैं कभी जोमैटो से डिलीवरी मंगाता हूँ और बंदा अगर बहुत ही लेट आ रहा है, तो जब वो फाइनली आता है तो मेरी वाइफ सफ़ेद साड़ी में जाती है लेने के लिए. हमारे साथ गेट खोल के बोलती है, भाई साहब आपने आने में बहुत ही देर कर दी. तो फिर पैसे नहीं देने पड़ते उसे. मस्त बढ़िया चलता है, ट्राई करके देख. एक और बताऊं, एक और वन लास्ट फिर चुटकुले करेंगे, ठीक पक्का. देखो तुम लोगों का नहीं पता मेरे को, पर मुझे ना तारीफ सुनना बहुत पसंद है अपनी. हाँ मुझे बड़ा मजा आता है. तो कभी ऐसा नहीं मिल रही है, हैं निकल गए 3-4 महीने, होता है कभी कभी, हैं नहीं चलता बढ़िया, और मुझे क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ. ड्राइविंग आती है मुझे. ऐसा पहला दिन नहीं चलाना, ठीक है, वो बहुत मारेगा वो. नहीं फर्स्ट डे नहीं, पहला ऐसा 2-4 दिन बिल्डअप करना पड़ेगा. ऐसा करना पड़ता है 2-4 दिन कि भैया गियर किस तरफ है. वो साइकिल हमें कुचल तो नहीं देगी. फिर 4 दिन बाद उसको भी अच्छा लगेगा. मुझे लगे पहन क्या टीचर हूं मैं. 5 दिन में बंदा बर्नआउट मार रहा है एकदम.
पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया. मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया. वो बहुत सही चीज है. मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिवजी के सपने में आ गया. माय नेम इज अनुभव सिंह बस्सी एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी सिविलाइज्ड सिटी मेरठ. नोएडा हमारे आओ कभी, वहाँ आदमी ज्यादा खबर आती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आई बिलोंग टू वेरी सिविलाइज्ड कम्युनिटी ऑल्सो, जाट हूँ मैं। थैंक यू। एंड आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। तो कहते नहीं कुछ नहीं करते, एल एल बी करते हैं। वो नहीं हूँ मैं, मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का, मेरे पास कोटा था। एक कोटे के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है, मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिवजी के सपने में आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि थोड़ा हमारे लिए छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए। हाँ मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। एग्जाम साहब ने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है, उन्होंने कहा नहीं तुम चूती हो। हमने कहा क्या करना है, करे जाके पढ़ाई करो। हमें बैक ये जैसे पता ही नहीं था हमें, हमें ठीक है हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए हमारे ग्रुप में, आधे नोएडा गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट, और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा अपना, मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के, मैंने कहा ये टीपने बस पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो, हम सारे एक एक करके जाएंगे ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल, पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। बहन से पहले सो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। मैंने कहा एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पे एक बॉक्स बना गया। हाँ एक बॉक्स बना गया, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लौंडे अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के आया ना इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहां लिख के आ गए ट्रू फॉल्स, छोटे छोटे जा रहे, नीचे के 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आकर रिवोल्व कर देकर हम नहीं खेलेंगे वाला गेम, चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को पता चल गया, उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई, लॉन्डे उसमें भी लिख रहा है बिकॉज इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। उसके बाद ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, पहला वाला दो। हाँ हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया। अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पे लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज पे लिखेंगे, और एक कागज वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा, तब एक लड़का जाएगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली, पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया, पेन जो फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर, तो पेन की कैप दे रहा। क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गया, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है। और जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पहन के बैठा है खाली हाथ, टीचर आया करे तेरे ही पहने करे, मैं तो पहन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा है? ये आगे वाले से मांगा था, आगे वाले ने पहन मुझसे मांगा, कह रहा तो आप ही का पहने, पहचान नहीं पा रहे हो। टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तुझ पे, तू गया आज, कह रहा ऐसे नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूं, कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे, कह रहा लिख तो दोबारा पेन नहीं है ना। हर ये बच्चे नहीं चले क्लास के, एक तरफ इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता है वो क्या रहा है, वहां से हाथ उठा, कह रहा सर मेरी कैप है, कह रहा यहां कैसे आ गई है, कह रहा मैंने फेंक दी थी, कह रहा हमने तो नहीं देखा, कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पज से फेंकी भी नहीं थी। टीचर घूम के गया इसकी सीट पर जाके इसका पेन उठाया, कैप उठाई, कह रहा बेटा ये तो इसकी कैप ही नहीं है, तो इसमें टाइट है, कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पर जाके टक 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 कर रहा, फर्रा अभी भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू हैं 6 फॉल्स। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस बता है कौन ये, कर लो चीटिंग। पास तो नहीं, मजा होता, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था ना हमारे पास, प्लानिंग थी। एक लड़के ने हमारा समूह ही तोड़ दिया, हाँ इसे हम पे विश्वास नहीं था, तो इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा, हमने कहा ठीक, अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है। आज नहीं हो ना पास, इसको देखेंगे आज क्या करेगा ये। इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली, पैर के नीचे, ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया। जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना, वो छप गया चप्पल पे उल्टा, अभी एग्जाम में बैठ के अपनी चप्पल घुमा रहा। टीचर आ गया, क्या ये, कह रहा डिजाइन है, कह रहा एक चप्पल पे, कह रहा सस्ती ली थी तुझसे मतलब। टीचर ने उठाया देखा, कह रहा इससे करके दिखा चीटिंग, कर कर, ये पहन के बाथरूम चला गया। टीचर पीछे पीछे शीशे के आगे चप्पल ले खड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे अपने आप आ गया, क्या वापस आ गया, अपने आप आ गया, कह रहा भाई वापस ले लो। कहा जा, लेकिन उन्हें उसी टाइम हमारी क्लास में लगा अब्दुल, अब्दुल ओबीसी की लिस्ट में लास्ट था, इसे कोई उम्मीद थी दुनिया से, ये जी चुका था जिंदगी, इसका हो गया था। ये आया कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ, पहली सीट पे बैठा, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा हाथ बंद कर लिया, टीचर इसकी तरफ आया हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पर हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा हुआ, हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा, करस में भी लिखा कर पागल है क्या। टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी, ये नहीं खोल रहा, कह रहा अच्छा एक सेकंड खोल रहा हूं, खोल रहा हूं, खोल रहा हूं। अल्लाह रहम रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई, पागलों की तरह घूम रहा, कह रहा क्या हुआ अभी ये। हमसे आए कह रहे इसके हाथ में कुछ लिखा था, मेरे को पता है नहीं, हमने तो ये भी सुना इसे काला जादू आता है। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें फेल कर दिया बेंच। लेकिन हम इंप्रेस हो गए, हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच क्या कर रहा था, हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको, हाँ हॉस्टल तक लेके आया कमरे बिठा के बाहुबली बोल के। हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ भी गया प्रेसिडेंट बन के, कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या? कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। मैंने कहा कर दे यार प्लीज, क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है? हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। मैंने कहा वह फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है, कैंसिल होने वाला था। 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे, टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहे हैं और तेज ला रहे। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए, पीछे वाले अभी भी ला रहे। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए, तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था, वो ऐसा करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन छूती है, अगली बार भूकंप आया ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है। सारी कंपनी बोल रही है हमारा एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे, MBBS का फॉर्म भर दिया, बायो थी भी नहीं मेरे पास, देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AIIE सारे एग्जाम दिए मैंने, IIIE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ, पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे, या मैंने इंटरनेट कैफे पर रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई, घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसके पास। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार, ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह? बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता आपको? फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स, वो लगी जहर है। हाँ उस टाइम में ठीक से फेंक नहीं मारा पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में, मैं जो भी चीज मिला था तो उसमें से धुआं निकल जाता था। मैंने सूंघ के देखा नशे भी नहीं हो रहे, घटा। ये नहीं चाहिए लाइफ में। लॉ स्कूल पढ़िया था, 5 साल का इतना बढ़िया हॉलीडे पैकेज था। हम हॉस्टल पहुंचे थे ना, कितने लोग हॉस्टल में रहेंगे? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे हैं? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए एक बार, तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया, हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता, जो प्यासा है, किस चीज का ये नहीं बता। हम सेकंड ईयर जो है वो हमारी रैंकिंग लेता था, उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैंकिंग ले रहे थे, रैंकिंग नहीं ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉम का अद्धा रखा, कहता इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते? मैं कहा तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है. अब्दुल याद है ना मीटिंग, उसके अलग ही फैन चल रहे हैं. वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना. मैंने कहा ठीक है करते हैं थोड़ी देर रुकते कुछ प्लान है. कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो ठीक चलो. रात को 1:30 बजे हम निकले नाम करने. पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया, वापस आ गए. उन्हें क्या करें, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है. फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हैं, वाटर कूलर का वहाँ पर. मैंने कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा. कि दो लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए. कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम. हमें तो हाथ मिलाए गले मिले दूसरे से. क्या बढ़िया आइडिया आया भाई. हम ऊपर गए जाके वाटर कूलर के सामने खड़े, वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता. हमने साइड से देखा तो त्याग ही निकल रहा नीचे से. हमने क्या देखा, हमने से देखा बहुत शराब पी रखी है उसने, इतनी आंख खुल गई उसकी. कह रहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. मैंने कहा हम कहाँ हैं यहाँ. 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला. हम दोनों यहाँ से चले गए. थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया. हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा, उसमें पानी नहीं आ रहा. हमने कहा क्या, कैसे नाम कैसे करें हम. फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें लगा कि अगर हम ये वाटर कूलर उठा के अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा. तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया. इतना ऊंचा था, बहुत भारी. अब्दुल के तो प्राणी निकल गए उठाने. मैंने तो एक हाथ से उठा लिया. आई एम स्ट्रॉन्ग. बहुत भारी था मुझसे भी. हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहां पे बिजली का. हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है. हमने वापस रखा, हमने उसका तार निकाला, उसको उठा के थोड़ी दूर चले. थोड़ी दूर जाके हम थक गए. हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा. पर अब किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसे आए. हमने लेके फिर हमने थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, थोड़ी देर और लेके चल रहे. नीचे तक लाने की हिम्मत थी, थोड़ी देर बाद हम थक गए. हमने कहा सुनो वैसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग. हमने नीचे देखा, हमने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तब तो बहुत ही नाम हो जाएगा. सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह. हमने वो रेलिंग पे रखा, पलट दिया. उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया. अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर. तुमने कि कैसा फुद्दू नाम हुआ हमारा, हम कोई चीज फेंक भी नहीं पाए. मैंने अब दूसरे का क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं. उठा तो तू पाया नहीं था. उसका जो थ्री पिन प्लग है उसकी रेलिंग में लटका हुआ है. भाई अब तो निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं. कहता रुक मैं मेस से चाकू लेके आता हूँ. मैं कर लिया मेस में से इतना बड़ा चाकू लेके. मैं कह सब छोड़ पहले मेस वाले के पास चल, मुझे उससे पूछना है इससे काटता क्या है वो. ये चिकन के नाम पे ऊंट खिला रहा क्या मैं. उससे रखा उसका प्लग काट रहे हम दोनों. वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया. प्लग वहीं पड़ा, हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे. तो मैंने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं DU में था. मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है. इतनी तेज ब्लास्ट हुआ पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा. सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया. हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था हमें. सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिए. उसकी ब्लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है, एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब. एक से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ. वहां वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए. हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं रेलिंग, रेलिंग में से ग्रिल जगह होती है उसमें से देख के. वार्डन हमारा पता कैसा था, तुम रात को 2 बजे बुला लो. मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो. हम तो कभी नहीं बुलाते तुम्हारे. 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो वो एकदम तैयार हो गया था. व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट जूते. उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही तो नहीं अंकल जान. रात को तैयार कैसे तैयार होकर सोता क्या तू? बेड पे पता क्या चलता है कि बेडशीट है कि तू है? वो आया आके खड़ा हो गया, उसको देखा वाटर कूलर को देखा। अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आके गिरी हो। फर्स्ट ईयर के लड़के थे हमारे बैच के थे, उन्हें भी पता नहीं क्या माल मिला हुआ था। इतना एक लड़का निकल गया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया, इसके बगल में से निकला, से बोलता जा रहा कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा इसका रूम चेक करना जरा, क्या कर रहा है ये, ठीक नहीं लग रहा मुझे लड़का। लड़के कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं यार, एक कह रहा सर मैंने देखा खुद गिरा। सर ये रेलिंग तक आया, फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं, फिर ये कूद गया। सर परेशान होगा, सर आप जाओ सो जाओ। वार्डन खड़ा होकर बातें सुने जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ने तो बता दिया कि अंकल जॉन ने कहा सर वो प्यासा था। एक तो हमारे बैच में तिवारी था, वो बना शेरलॉक होम्स। हाँ उसने एक तो फील में इतनी रहती थी ना लड़के, वहां वकील बने नहीं है अभी, फर्स्ट सेमिस्टर चल रहा है। वार्डन से कह रहा माय लॉर्ड आधा माल तो वही खराब हो गया। कह रहा माय लॉर्ड ये देख रहा वाटर कूलर का तार उठा के, तो मुझे लगता है हॉस्टल में किसी को 3-पिन प्लग की जरूरत थी। तो उसने प्लग तो रख लिया, बचा कुछ फेंक दिया। आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड। वार्डन कह रहा हाँ वकील साहब बिल्कुल, वाटर कूलर में बचा कुछ वाटर कूलर ही तो है। सही कह रहे हैं आप। नीचे ये बात चल रही, मैंने अब्दुल को देखा तो पैर से उस प्लग को लेके जा रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा सबूत मिटा रहा हूं भाई। क्या करेगा इसका? उसने प्लग उठाया, उसको वापस लगा के आ गया। चाकू हाथ में इसके, ये सबूत मिटाया इसने। नीचे चल फटाफट, वहां पहुंचते हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गया। नीचे उतरे वहां पहुंचे तो इतना इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये, रास्ते रास्ते में पता नहीं क्या हो गया इसको। हम वाटर कूलर के पास पहुंचे, वार्डन के बाद जैसे उसने देखा ना वाटर कूलर में, कह रहा हाँ। मेरी हंसी छूट गई, मेरे दिमाग में अभी अभी तो कर रहा है। मैंने कहा बोलियो मत, कुछ चुप रही। वार्डन ऊपर पहुंचा साइट पे, साइट पे जा उसने वहां जाके देखा, अब उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ। वार्डन ने पहले तो तिवारी को बुला कर जरा कहता केस रीओपन कर दे तुम्हारा। अगले दिन सुबह वार्डन ने सो गए, हम जाकर उसने कमेटी बनाई अपनी, वो करी पूरी रिसर्च करी, पता नहीं किस हराम को ने हमारा नाम बता दिया कि हमें ऊपर जाते देखा था। वार्डन ने हमें बुलाया अपने रूम में, मैंने अब तुमसे बोला था कि सुन मान मत जाइयो और कुछ बकचोदी मत करियो, बिल्कुल ऐसे शरीर बन के बैठना कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस कॉलेज में। हम रूम में घुसे, आंसू गिरने लगे इसके। मैंने कहा अरे बात भी नहीं हुई अभी तो कुछ, भाई साहब ऐसे भी नहीं आ रहे, यहां से यहां गिर जा रहे इसके आंसू। उसके सामने बैठे हम, वार्डन बोला कौन से कि हाँ भाई तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर? मैंने कहा नहीं सर। कहता पक्की बात? मैं पक्की बात। कहता क्यों फेंका था? मैंने आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। अभी अभी तो बोला, अभी तो बात खत्म हुई थी। कह रहा नहीं मुझे आप पे शक है। मैं कहा शक था फका, पहले मुझे ये बताओ कि तुम सुन पा रहे हो तो तुम बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं फेंका, मैंने तो पानी छोड़ रखा है। मैं तो नीट पीता हूँ, मुझे को मतलब नहीं है। थोड़ी देर तक बकचोदी करता हूँ उससे, कहता तुम्हें फेंका मुझे पता है। मैंने कहा सर हम तो नहीं मान रहे, देखो बाकी आपकी मर्जी है। कहता तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन सीनियर्स रैगिंग नहीं ले पा रहे हैं, वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा रहा, कैसे चल रहा है कॉलेज। नहीं क्या ऑप्शन है, हमने पैरों पैर रख लिया, मेरे को ऑप्शन बताओ क्या। कहता या तो सस्पेंड हो जाओ या फिर फाइन भर दो। मैंने कहा अच्छा सस्पेंड क्यों होना है, नाम क्या है, यहीं रहेंगे। मैंने अब्दुल से कहा फाइन। कहता फाइन। मैंने कहा फाइन। वार्डन ने लगा दिया हम पे फाइन। हमें लगा था 6,000 रुपये मांगेगा, मुंह पर बैठ के मार देंगे। उसने प्रिंट आउट निकाले हमारे सामने रख के दो पेपर, उसने हम पे फाइन लगाया 1,35,000 रुपये का। मैंने वो देखा, मैं कि ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है मेरे। मैं कहा सर इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, पूरी बिल्डिंग हमसे ले लोगे क्या आप। हमने एक फेंका है वो भी आप कह रहे हो, हमने तो माना भी नहीं अभी तक, इतने पैसे थोड़ी मांगता है कोई। उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपये का आता है। मैं कहा सर देखो ऐसा आप लोग गलती है, अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज़ आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो, सबको पता चलना चाहिए कि इतना महंगाई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे इसमें से प्राइस टैग तोड़ने की, मुझे पता होता है इतना महंगा आता है, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपए मुझे तो, मैं घड़ा बन के बैठ जाऊंगा वहां पे। हाँ यार मैं ऐसे करके आइसक्रीम निकाल दूंगा यहां से, कोई बात है करने की। नहीं कि सर इतने पैसे नहीं हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, मैं घर पे भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा पापा रही से मैं नहीं हूं। मैंने अब्दुल से पूछा मैंने कितने पैसे तेरे पे करा, भाई होंगे 400-500 रुपए। मैं कहा तू एफडी करा ले जाके भाग ले, 400 रुपए फाइन बोला था तू। उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक कटाई, मैं जो करना करो निकलो यहां से। मैंने कहा ठीक। हम गए हॉस्टल में जाकर हमने लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया है और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरे रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करे हमने। 25-30 रुपए इकट्ठे कर पाऊंगा मुझे। उसकी भी चाय पी के, क्योंकि चाय पे तो डिस्कस कर रहे थे। सुबह उठे हॉस्टल में, गार्ड आया हमें बुलाया, हम वार्डन के रूम में गए। वार्डन ने हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका है। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा के क्या। कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में एक सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। क्या लेना एक न देने दो, त्यागी सस्पेंड। त्यागी के हाथ में लेटर आया, मैं कल हॉस्टल में था। वो सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंड हो गया कि ये कैसे सस्पेंड हो गया। त्यागी गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल गया, ऐसे अंदर गुजर बाहर आया, ऐसे बाहर आया। हमने क्या हुआ, कह रहा है यार मैं चूते हूँ। वो तो है, हुआ क्या है। कहता यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। वाह त्यागी जी वाह, बहुत बढ़िया काम किया। हमारा नाम तो नहीं हो पर आपका कभी मिटेगा नहीं।